सेवन करो भगवत अर्थ बुद्धि से, और चाहे कोई प्रकार की क्रिया करो, किंतु वो शास्त्र विहित होनी चाहिए। इस प्रकार से किसम जो कि कर्म करता हुआ भोग भी शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र विधि के अनुसार होने चाहिए। तो कहते हैं कि मनुष्य जो भी कछु करता है, भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तू जो भी कछु करता है सो सब मेरे अर्पण कर दे, और तू जो भोजन करता है वो भी मेरे अर्पण कर दे। भगवान हृदय के वहां सबके विराजमान है, भगवान जटाग्नि होकर के हमारे समझो उदर में विराजमान है, और हम भोजन करें तो इस भाव से करें कि भगवान के भोग लगा रहे हैं, तो भगवान भीतर में अपने उसको भोजन पा रहे हैं, तो भगवान के अर्थ हो गया, भगवान के अर्पण हो गया। यत् करोति अर्जुन, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, और जो कुछ दान देता है, किसी का उपकार करता है, वो भी तू मेरे ही अर्पण करते, और जो तू तपस्या करता है वो भी मेरे अर्पण कर दे, जो तू यज्ञ करता है, पूजन करता है, वो भी सब मेरे अर्पण कर दे। क्यों? तो इस प्रकार के करने से कि सब प्रकार के जो पुण्य और पापों के बंधनों से तू मुक्त होकर के, पुण्य और पाप कर्मों का जो फल है उस फल के बंधनों से मुक्त होकर के, यानी उससे मुक्त हो जाएगा, और मुक्त होकर के तू फिर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो इससे की ये बात सिद्ध हो जाती है कि वही एक प्रकार से कर्म जो निष्काम भाव से या भगवतर से बुद्धि से किया जाए तो मुक्ति देता है, और वही सब कर्म जो है तो बंधन के हेतु हो जाते हैं यदि सकाम भाव से करें। हमारे शरीर में जो बल है उस बल को हम परोपकार में लगा दें और निष्काम भाव से लगा दें, और निष्काम भाव से परोपकार करें, लोगों की सेवा करें, तो उस बल के प्रभाव से हमारी मुक्ति हो जाए, और उस बल का प्रयोग हम दूसरों के अनिष्ट करने में लगा दे, दूसरों के मारने पीटने में, दूसरों का बुरा करने के में लगा दे, तो उसका फल हमको नरक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से कि हमारे पास में जो रुपये हैं, उन रुपयों को हम समझो कि दुखियों की सेवा में लगा दें, महात्माओं की सेवा में लगा दें, उस भगवान की भक्ति में उन रुपयों का हम खर्च करें, और निष्काम भाव से करें, प्रभु आपके रूपी आपके काम में खर्च हो रही, तो उसे परोपकार से, दान से, उस सेवा से उसकी मुक्ति हो जाती, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। और यदि उन रूपियों को हम समझो के लोगों के अनिष्ट में लगा देवे, मुक्त में वाजी में लगावे, लोगों का बुरा करने में लगा देवे, कि हमारा चाहे 10,000 रुपया खर्च हो जाओ, तुम्हारे को तो मैं कैद करा कर ही छोड़ूंगा, तो ये बुरा भार इस नरक में। इसी प्रकार से थी हम जो हमारे में विद्या है, ज्ञान है, जो हमारे में विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, उस विवेक बुद्धि को हम भगवान में लगा दे, तो उससे हमारा कल्याण हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और उस बुद्धि को एक प्रकार से हम आप बम बनाने में लगावे और लोगों का अनिष्ट करने में लगावे, समझो कि वर्तमान के साइंस में लगा दे, और उसमें लगा करके समझो जिससे अधिक से अधिक मनुष्य कैसे ज्यादा मरे, इस प्रकार से लगावे विचार करें बुद्धि को, तो घोर नरक की प्राप्ति हो। तो जो जो चीज हमारे पास में है, बुद्धि है, बल है, ऐश्वर्य है, रुपया है, इन किसी भी चीज को हम भगवान के काम में लगा देवे, परोपकार के मन निष्काम भाव से लगा देवे, तो उससे कल्याण हो सकता है, भगवान मिल सकते हैं। और यदि बुरे काम के मन लगावे, समझो कि उसको अपने मदरा पीने में, मांस खाने में, व्यभिचार करने में, और संसार के बुरे कामों में, जुआ खेलने आदि के मन पाप कर्म में लगा देवे, तो उसे घोर नरक की प्राप्ति। इन सब बातों को समझ करके और हम लोगों को अपने आत्मा के कल्याण के लिए तत्परता के साथ में कोशिश करनी चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 आनंद ख्याल करना चाहिए।
जब इन नाशवान पदार्थों से भी परमात्मा की प्राप्ति होए, तो एक विचारने की बात है कि जैसे कोली साथे हाथी मिले उससे भी भगवान समझो कि कम दाम में मिल रही, क्योंकि हाथी की और कोली की सत्ता तो एक है इस संसार में। समझो कि जो हाथी की सत्ता वही कोली की सत्ता है, मूल्य जो अधिक और कमी है ना। और यहाँ भगवान तो सत्य स्वरूप है, उसकी सत्ता तो वास्तविक सत्ता है, और ये संसार तो नाशवान है, इसकी तो समझो कि काल्पनिक सत्ता है, भगवान की कल्पना सब। तो इन नाशवान मिथ्या पदार्थों के अर्पण करने से सत्य जो भगवान की प्राप्ति हो जावे, तो समझो कि ऐसा मौका फिर कब मिल सके। तो ये सौदा तो कर ही लेना चाहिए। अरे भगवान ने ये जो हमको मनुष्य का शरीर दिया है और ये सब सामग्रियां दी है, इसीलिए दी आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए। और परमात्मा की प्राप्ति से आत्मा का उद्धार हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति कहो और आत्मा का उद्धार कहो, कल्याण कहो, एक ही बात है। तो भगवान ने मनुष्य का शरीर देकर के हमारे में जो बल दिया है, बुद्धि दी है, जो योग्यता दी है, जो हमारे को धन दिया है, जो कुछ चीज हमारे अधिकार के में दी है, वो भगवान इसलिए दी है कि इससे तुम अपना कल्याण कर लो। और इतने से हमारा कल्याण हो सकता है, दूसरे से कोई चीज लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास जो कुछ सामग्री है वो काफी है भगवान की प्राप्ति के लिए, किंतु उन सामग्रियों को भोग में नहीं लगा करके, समझो कि अपने ऐसा आराम में नहीं लगा करके, और दूसरे आदमियों को दुख देने में नहीं लगा करके, उसका दुरुपयोग नहीं करके सदुपयोग करें, तो उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। दुरुपयोग क्या कि भगवान की जो आज्ञा के विरुद्ध हम काम करें, गलत काम में लगावें, भगवान के मन के विरुद्ध, आज्ञा के विरुद्ध, संकेत के विरुद्ध काम में हम खर्च करें, शास्त्र के प्रतिकूल काम के मां इस सब चीजों को, किसी भी चीज को हम खर्च करें, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने ऐश्वर्य को, अपने रुपयों को, किसी भी बुरे काम में लगावें, तो हमारे को घोर नरक की प्राप्ति। और इन चीजों को भगवान के मां लगा देवें कि प्रभु आपकी देवी चीज और आपके मैं समर्पण करता हूँ, तो उसका फल परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कि हम सर्वस्व अर्पण कर दे, अपने आप को और ऐश्वर्य को, जो कुछ हमारे अधिकार में है, सब भगवान की चीज समझ करके भगवान के समर्पण कर दे, तो फिर भगवान क्या करेंगे कि भगवान अपने आप को और अपने ऐश्वर्य को सबको हमारे अर्पण कर देंगे। देखिए तुम्हारा ये तो प्रेमी है ना, जहाँ प्रेम का संबंध है, उस जगह से भी इसके मैं समझो कि आपने भगवान का भक्त जो अपने प्रेमास्त्र प्रभु के अर्पण अपना सर्वस्व कर देता है, अपना तन मन धन प्रभु के अर्पण कर देता है, तब भगवान अपना तन मन धन उसकी अर्पण कर दे। समझो कि एक अच्छे जो भगवान के भक्त होते हैं, महात्मा जो पुरुष होते हैं, जो उनके साथ में भी हम ऐसा व्यवहार करें कि हमारा जो तन मन धन सब आपका ही है, और उसे एक भक्त के प्रति हम अपने सर्वस्व को अर्पण कर दे, अपने शरीर को और अपने पास जो अपने अधिकार के बीच में है, बस अपने मन को, तन को और सबको हम भगवान के भक्त के अर्पण कर दें, तो भगवान का भक्त जो है उसके अधिकार में जो है वो हमारे अर्पण कर देता है। फिर भगवान की तो भांति क्या है, लोक में भी देखने में आता है, आपसी में जो दो मित्र होते हैं, और एक मित्र जो है एक दूसरे मित्र के लिए इस प्रकार का भाव रखता है कि मेरा जो कुछ अपने मित्र का ही है, तो उस मित्र के हृदय में भी यही भाव रहता है कि मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा ही है। सत्य जो मित्र होते हैं उनका ऐसा भाव होना ही चाहिए, क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं वे भगवान का अनुकरण करते हैं। इन सब बात को समझ कर सके, और ये जो जितने संसार के मिथ्या पदार्थ हैं, शरीर भी संसार के पदार्थों में ही है, और शरीर के भीतर के मन बुद्धि इंद्रियां जो भी कुछ है, समझो कि ये माइक चीज है। तो इसे समझो कि काल्पनिक माइक चीजों के समर्पण करने से भगवान मिले, परमात्मा एक प्रकार से मिल जाए, तो इससे बढ़कर समझो कि और मंदा सौदा क्या हो सकता है। ऐसे मौके में हम एक प्रकार से विलंब करें, या एक प्रकार से आनाकानी करें, या एक प्रकार से इस रास्ते जाने में हिचकिचाव है, तो ये हमारी बिल्कुल मूर्खता है। तो ऐसा मौका पाकर ये सौदा अपना बना ही लेना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। गीता में, रामायण में, भागवत में जो भगवान के साथ में जो प्रेम की बात है, भगवान के जो भक्ति की बात है, भगवान के विषय में जो श्रद्धा की जो बात है, वो एक अलौकिक बात है। अपना सारा जीवन समझो कि उसी काम में लगा देना चाहिए। दीदी कहो किस प्रकार से हम सारा जीवन लगा देंगे तो फिर शरीर का निर्वाह कैसे होगा? वो जो शरीर का जो निर्वाह है वो भी भगवान की भक्ति का अंग बना देना चाहिए। कैसे? अभी तो बताया एक प्रकार से थी, अपने भोजन करें तो किसके लिए? भगवान के लिए। समझो कि कोई भी हम काम करें तो भगवान के लिए। जैसे एक लोभी आदमी सारी चेष्टा रुपयों के लिए करता है, उसी प्रकार से थी या भगवान का भक्त भगवान के लिए करता है। भगवती जो राधिकाजी जो है, एक प्रकार से उसकी सारी चेष्टा जो भगवान के लिए हुआ करती थी। भगवान जिस तरह से राजी हुए वैसे नाचना से भगवान राजी हो तो राधिका जी नाचे, सेवा करना से राजी हो तो सेवा करती है, तो भगवान उसकी सेवा करे इसमें भगवान की प्रसन्नता है तो राधिका जी कहते हैं वो ठीक है, सेवा करा भी देवे। क्योंकि राधिका जी का जो शरीर है वो भगवान के लिए, राधिका जी की जो चेष्टा है वो भगवान के लिए, वो तो भगवान के रुख को देखती रहती है, जिस तरह से भगवान चाहते वैसे करती है। और भगवान जो कुछ कर रहे हैं एक प्रकार से उसको देख देख करके मुग्ध होती है, तो भगवान की लीला को देख देख करके, भगवान की अपने क्रीड़ा को देख देख करके खुश होती है। तो गोपियां की सारी जो इंद्रिया है वो एक प्रकार से भगवान की सेवा में, भगवान की क्रीड़ा में, भगवान के साथ में जो वही एक भगवान के साथ में रमन है, तो नेत्रों से भगवान को देखती है तो मानो नेत्रों के द्वारा भगवान को पी जाऊं, भगवान को अपने नेत्रों में बसा लेती, मन से ध्यान करती है तो एक प्रकार से मन में बसा लेती है, और जहाँ नेत्र जाते हैं वहीं भगवान को देखती है, और जहाँ मन जाता है वहां भगवान को देखती है, और हृदय का मान जो बुद्धि है बुद्धि में अपने ज्ञान के रूप में भगवान को देखती है, और समझो कि हाथों से थी शरीर से थी समझो कि आपने भगवान की सेवा करती है। हाथों से भगवान का जो स्पर्श है वो एक प्रकार से वो भगवान की सेवा है। तो भगवान का जो दर्शन है, भाषण है, वार्तालाप है, मिलन है, एक प्रकार से उससे भी भगवान के मां रमण है। तो इस प्रकार जो माधुरी मूर्ति जो भगवान है, एक प्रकार से उनके साथ में जो दर्शन भाषण वार्तालाप है सभी अमृत के समान, आनंद के समान, और समझो कि उसको रस रूप प्रतीत होते हैं, सब में रस भरा हुआ रहता है, उस सबके बीच के वहां रस आस्वाद देती। जब भगवान मिलते हैं तो एक प्रकार से प्रत्यक्ष के बीच में, जब रास क्रीड़ा होती है तब प्रत्यक्ष के बीच के वहां, और जब भगवान छोड़ करके चले जाते हैं तो वीरेंद्र में जाकुल होकर के अरे मन से वो काम करती, मन से रमण करती, जो प्रत्यक्ष के वहां भगवान के मिलने पर साक्षात रूप से जो अपने चेष्टा जो रमण और जो अपने क्रीड़ा होती है वो ये प्रकार से भगवान की अनुपस्थिति में भगवान के न रहने के समय के बीच के वहां वो ही बात सब मन से करती, उनसे सब क्रिया मन से होती रहती। वो मानसिक जो क्रिया है वो भी एक प्रकार से जो कि भगवान का मन से सब कुछ करती है, दर्शन भाषण प्रश्न वार्तालाप चिंतन, तो वो मानसिक रमण है। इसी प्रकार से हम लोगों को समझो कि भगवान के साथ में मानसिक भाव से थी अपने क्रीड़ा करने के लिए, वही बात इस श्लोक में बताई कि मच्चिता मद्गत प्राण बोध जंत्र परस्परण कथियम तस्य मान नित्यम तुषंती च रमंती च, गीता अध्याय 10 श्लोक 9 में, कि जिनका मेरे में चित बसता है वो मच्चिता, और मेरे लिए जो जीते हैं जीवन को धारण करते हैं, और मेरी बात आप श्रीमन दूसरे से करके मेरे तत्व को जानते रहते हैं, और मेरे गुण प्रभाव तत्व रहे की बात मेरे भक्तों के बीच के वहाँ कहते रहते हैं, कथन करते हैं। और इस प्रकार से मन बुद्धि इंद्रियां से शरीर से सब प्रकार से थी मेरे में सुरमण कर रहे हैं। भगवान का जो दर्शन है, भाषण है, सफर्त है, वार्तालाप है, रमन है, चिंतन है, जो कुछ भगवान के साथ में क्रीड़ा है, खेल है, ये सब एक प्रकार से थी जो कि रमन का ही प्रकार है। इससे थी जो बड़ी भारी शांति, प्रसन्नता, आनंद आनंद प्रमोद हो करके मुग्ध हुए उसी के वहां आस्वादन दे रहे। यो ये सो रस है, अरे यो रस है वही अमृत है, अरे यो एक प्रकार से थी ये समझो कि आनंद है, अरे यो प्रेम है। तो एक प्रकार से प्रेम कहो, रस कहो, आनंद कहो, माधुर्य कहो, मधुरता कहो, सब एक प्रकार से मधुर ही मधुर है। सब जो मन से इस प्रकार से सब कर लू यो एक गुप्त प्रेम है। तो भगवान के साथ में जो गुप्त प्रेम है कि तो भगवान ही जाने कि वो ही जाने प्रेम करने ही जाने। आपने राधिका जी जो है भगवान की जो समझो प्रधान सखी, उनकी एकांत के बीच में भगवान के साथ में जो चेष्टा है वो केवल भगवान के लिए, भगवान आनंद में जो भगवान है उस आनंद में को आनंद देने के लिए। और भगवान की जो चेष्टा है वो सब राधिका जी को आनंद देने के लिए। आपने देखी थी परस्पर की वहां उत्तर उत्तर प्रेम बढ़ाने के लिए, आह्लाद बढ़ाने के लिए, आनंद बढ़ाने के लिए वहां समझो कि न लज्जा है, न कोई भय है, न कोई मान है, न कोई सत्कार है, कुछ भी नहीं, सब दोनों को समान कायद है। वहां कोई स्तुति प्रार्थना भी नहीं, स्तुति प्रार्थना भी साधन काल के वक्त, वहां स्तुति प्रार्थना कौन किससे करे, वहां कोई छोटे बड़े भी नहीं, वहां एक प्रकार से थी अपनी आत्मा ही है दोनों, अपना दोनों एक स्वरूप है, दोनों अंग है, एक ही चीज है, दोनों देखने के दो है। स्त्रियां भी इस प्रकार से भगवान से प्रेम कर सकती है और पुरुष भी इस प्रकार से भगवान से प्रेम कर सकते हैं। इस प्रकार का जो प्रेम है तो पुरुष सखा भाव से कर सकते हैं और स्त्रियां सखी भाव से कर सकते हैं। सखी भाव उसी को माधुरी भाव कहते हैं और सखा भाव उसी को प्रेम भाव कहते हैं। जो प्रेम भाव है, माधुरी भाव है, वो सब एक ही। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण आपने मानो कोई आपने भगवान है तो प्रेम की वर्षा करते हो और हम सब मानो कोई प्रेम में एक मगन हो गए और वो प्रेम है वो आनंद है और वो ये तो शांति है। प्रेम ही शांति के रूप में दिखता है, भगवान ही स्वयं आनंद के रूप में, प्रेम के रूप में, शांति के रूप में और ज्ञान के रूप में दिखते हैं। हम लोगों के भीतर में जो प्रसन्नता है, शांति है, आनंद है, जो भगवान को समझो कि सगुण निराकार स्वरूप है। हम लोगों के बीच में जो प्रसन्नता है और हम लोगों के भीतर में जो ज्ञान है, चेतनता है, एक प्रकार से जागृति है, यो भगवान को प्रत्यक्ष में चिन्मय स्वरूप है, यो सगुण निराकार स्वरूप है। देखो प्रत्यक्ष के बीच के वहां इन बातों से कितनी शांति होती है, कितनी प्रसन्नता होती है, कितना आनंद होता है। इस प्रकार को साक्षात भगवान से व्यवहार हुए तब तो आप बताओ कि उस आनंद की क्या सीमा रह सकती है। अरे वो पुरुष फिर उस भगवान को कैसे छोड़ सकता है, अब उससे कैसे एक क्षण भी अलग रह सकता है, और कैसे उसको बुझा सकता है। इस प्रकार का समझो विशुद्ध प्रेम, इस प्रकार का हेतु ही प्रेम, इस प्रकार का समझो कि निष्काम प्रेम आपसी में जो मनुष्यों का हो तो कल्याण हो सके। फिर भगवान के साथ हो तो फिर करना क्या। तो हम लोगों को आपसी में भी इस प्रकार का प्रेम करना चाहिए और समझो भगवान के लिए, तो भगवान के लिए ऐसा प्रेम करते हैं तो वो भगवान के साथ प्रेम है। प्रेम की जो लीला है, प्रेम का जो एक विषय है वो अलौकिक है। प्रेम की बातें आपसे में प्रेम की तो बातें करें और प्रेम का ही दर्शन करें और मन से और समझो कि प्रेम कोई बर्ताव है, और आपसे मैं एक दूसरे के साथ स्वार्थ को त्याग करके निष्काम भाव से प्रेम करे, प्रेम बढ़ाने का ये रास्ता कि अपनी सारी क्रिया समझो कि उसके इसके लिए उसके सुख के लिए उसको आनंद देने के लिए करें, अपनी सारी क्रिया अपने शुभ भोग के लिए ही, अपने प्रेमी के लिए, हम लोग अपने प्यारे प्रेमी के लिए एक प्रकार से सारी चेष्टा करें तो कितना आनंद। प्रेमी को भोजन कराने में खूब आनंद होता है, प्रेमी को जल पिलाने में खूब आनंद होता है, और प्रेमी की सेवा करने में आनंद होता है, और प्रेमी के हुक्म पालने में आनंद होता है। भगवान का जो भक्त है और भगवान के लिए भगवान का भक्त एक प्रकार से थी अपने शरीर को पिछवा करके थे, और समझो कि उसने को आपने बिछा दिया भगवान के लिए, और भगवान ने उसके ऊपर शयन करे तो भी वो अपने उसका चूर्ण भी एक प्रकार से प्रफुल्लित होकर के उनसे शेषनाग जी जो है वे अपने भगवान की शेष बन करके, और भगवान के एक प्रकार से समझो सज्जा बन करके सुर दे रहे, तो हर प्रकार से भगवान के साथ में संबंध जुड़ने से आनंद ही आनंद है, और हर प्रकार की भगवान की चेष्टा और आनंद के देने वाली होती है। जैसे गोपियां भगवान की कोई भी चेष्टा कोई भी क्रीड़ा देखती है मुग्ध हो जाती है, चाहे कुछ भी भगवान करो, चाहे भगवान गावन चलाओ, और चाहे भगवान एक प्रकार से भोजन करो, और चाहे भगवान से कहे समझो कि रास्ता चलो, चाहे भगवान का शरीर है जिसको गवा की धूरी स्थिति एकदम भय हो दूषित हो जाओ, तो भी उसको देख करके प्रसन्नता ही प्रसन्नता उनका, क्योंकि उनका गोपियों का तो भगवान के वहां भगवत भाव था ना, इस वास्ते भगवान का जो दर्शन है सफर से वार्तालाप है ये सभी एकदम अपने प्रेम में है आनंद में है रस भरे हुए। तो ये जो बात है ये जो कथा है ये जो विषय है ये रस को विषय है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
यह भगवान के प्रभाव के विषय का व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा आज मिति पौष सुदी पंचमी संवत 2011 को रात के 10 बजे श्री रामरिक दास जी प्रश्रम बुढ़िया की कोठी अमन ज्योति वृंदावन में दिया गया।